ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अर्चा दावर्चते तावद् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत्। जावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अर्चा दावर्चते तावद् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत्। जावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अर्चा दावर्चते तावद् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत्। जावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तात्पर्य, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी श्री भगवान के विग्रह प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं। विभिन्न वर्णों के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों जथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म हैं। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में, उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों का सही सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपना तथा अन्य जीवों के भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निभा रहा हो किंतु वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्मकृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मकृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी है। स्वकर्मकृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। तो आप लोग क्रमशः भगवान कपिल देव के इस दिव्य उपदेश को सुन रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कपिल देव भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में 8 श्लोकों का एक ग्रुप है जिसमें श्री भगवान प्रत्येक जीवों के हृदय में हैं। भगवान की व्याप्ति कण कण में है। एक भक्त को इसका अनुभव होना चाहिए। इसके लिए भगवान ऊपर से विश्वास लोक से लेकर 27 श्लोक तक इस बात की चर्चा किए हैं कि किसी भी भक्त को प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भगवान को देखना चाहिए और इस रूप में श्री भगवान सर्वव्याप्त हैं, सब जगह हैं। कहने का अर्थ कि बिना भगवान की उपस्थिति के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। सब जड़ जगत में अपने से कुछ नहीं हो सकता। सब जगह जो कुछ दिखाई दे रहा है, हो रहा है, वो उसी पावर हाउस के कनेक्शन से, वहीं से शक्ति सबको प्राप्त है। सबके हृदय में भगवान है। भगवान का अनुभव करना भक्तों का मुख्य कर्तव्य है। सब जगह भगवान है। और कृष्ण भावना भावित, कृष्ण रत चित भगवान को परमात्मा रूप से इस प्रकार अनुभव कर लेता है, जैसे आप लोग देखे होंगे फर्नीचर के काम करने वाले जो कारपेंटर हैं, बढ़ई, तो बहुत से उस काम में लकड़ी के बुरादों के बीच लोहे के छोटे छोटे कांटे गिर जाते हैं जहां तहां, उसको हाथ से चुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके पास शक्तिशाली चुंबक होता है जिसको घुमाता है और उसको खींचता रहता, पकड़ लेता है। उसी प्रकार कृष्ण भावना में उन्नत चित वाले भक्त सर्वव्याप्त परमात्मा को सबके हृदय में उसी प्रकार देख लेते हैं। भगवान सब जगह है, क्योंकि श्री भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग सुप्रसिद्ध वाक्य सुने होंगे कि भगवान के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। यह वास्तव में सत्य है, लेकिन इसके साथ साथ जीवात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक जीवात्माओं के साथ श्री भगवान है, सबके हृदय में, सब जगह। तो एक भक्त को इसकी अनुभूति करनी चाहिए। तो इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ अर्चा विग्रह की पूजन करनी चाहिए। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से दो बातें बताई गई हैं। एक कि श्री भगवान के बिना सभी कर्म अधूरा है, भगवत आराधना के बिना सभी कर्म अधूरा है। और दूसरी बात कि भगवत अनुभूति हो जाने पर केवल भगवत आराधना करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, करने ही लगता है व्यक्ति, अब दूसरा कुछ करता ही नहीं। तो अब किसी कर्मानुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसकी विशद व्याख्या शास्त्रों में है। तो इस ज्ञान के विकास के लिए कि भगवान सब जगह हैं और उनकी आराधना बहुत जरूरी है, कोई भी कर्म कोई करे भगवत आराधना आवश्यक है। कर्म का अर्थ जो शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया है उसे ही कर्म कहते हैं। ऐसे जो अपने मन से कुछ भी करे उसको कर्म की बात नहीं कही गई है। तो सभी कर्म भगवत आराधना से रहित होने पर व्यर्थ है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय एक प्यार बोले हैं, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिलेउ से रौरवे पड़ी मजे। अगर चारों वर्ण और आश्रम के व्यक्ति अपने कर्म का पालन करता है ठीक ढंग से, वर्ण और आश्रम का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी अपने कर्म का ठीक ढंग से पालन करें, लेकिन वो कर्म करने के बाद भी नरक चले जाएंगे, स्वकर्म कर ले उसे रौरवे पड़ी मजे है। तो उनसे गलती क्या हो गई, कर्म का पालन तो ठीक से किए। कहते हैं कि कृष्ण नहीं भजे, उसने कृष्ण की आराधना नहीं किया, अपना कर्म तो ठीक से किया। इसी कर्म को धर्म कहते हैं। धर्म कर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। तो शास्त्रों में बहुत सारे कर्तव्यों का वर्णन है धर्मों का, लेकिन समस्त कर्मों को, समस्त कर्तव्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नित्य कर्म या नित्य धर्म, जिसको सनातन धर्म, जैव धर्म, भगवत धर्म, भागवत धर्म कहा गया है, जो कभी बदलता नहीं, काल परिस्थिति से वो बदलता नहीं है। जैसे भगवान सब जगह हैं, सब समय उनकी आराधना करनी चाहिए। हरि सर्वत्र सर्वदा, सब स्थान में सब समय, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, वैकुंठ में, कहीं भी भगवान हैं और उनकी आराधना किसी भी रूप में कहीं से करना चाहिए। आप पंचम स्कंद में भूगोल के वर्णन के क्रम में सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुने हैं, पढ़े होंगे कि सभी लोकाध्यक्ष अपने गणों के साथ भगवान की आराधना करते हैं, विविध मूर्ति के रूप में भगवान आराध्य हैं। इसका अर्थ है कि भगवान सबके लिए आराध्य हैं और सब जगह के लिए आराध्य हैं, सब समय के लिए आराध्य हैं। तो श्री भगवान की आराधना करना ये जीव का असली कर्तव्य है, इसलिए इसको नित्य धर्म कहते हैं। नित्य, जैसे जीव नित्य है, भगवान नित्य है, वैसे ही जीव और भगवान के बीच का कर्तव्य भी नित्य है। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इस नित्य धर्म के साथ साथ देहधारी जीवों के लिए कर्तव्य हो जाता है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म कहते हैं जो किसी कारण से, किसी हेतु से जिसका पालन करना होता है, किसी निमित्त से। तो शरीर मिला है तो इसके लिए कुछ कर्तव्य करना ही पड़ेगा, भोजन जुटाना, कपड़ा, घर, मकान। इसके साथ अलग अलग अवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सब नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म और नित्य धर्म में मुख्य अंतर यह है कि नित्य धर्म किसी कारण से बदलता नहीं, किसी परिस्थिति से बदलता नहीं, और नैमित्तिक धर्म बदलता ही है, उसको बदलना ही, वो टेम्पररी धर्म है। किसी निमित्त से उसका पालन करना हुआ और वो निमित्त पूरा हुआ तो बदल जाएगा। जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो ही गृहस्थ आश्रम में आएगा तो धर्म बदल जाएगा, और जो वानप्रस्थ में जाएगा तो गृहस्थ धर्म का, संन्यास के बाद तीनों नीचे के धर्म। तो ये टेम्पररी धर्म है और अवस्था के कारण इसका पालन अवश्य करना चाहिए परिस्थितिवश, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। नित्य धर्म का पालन नितांत आवश्यक है, उस समय भी आवश्यक है जब आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी थे, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस समय भी इसका पालन आवश्यक है। तो हम इस श्लोक को इस रूप में समझेंगे कि इसका अन्वय इस रूप में है कि जावत सर्वभूतेषु अवस्थितम ईश्वरम माम स्वहृदय न वेद तावत एवं स्वकर्म कृत अर्चादौ माम अर्चयेत। मतलब जावत सर्वभूतेषु अवस्थितम ईश्वरम माम स्वहृदय न वेद, जब तक सर्वभूतों में अवस्थित मुझ सर्वनियंता भगवान परमात्मा रूप को अपने हृदय में प्राप्त नहीं कर लिया, नहीं अनुभव कर लिया, तावत तब तक स्वकर्मकृत मतलब वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए अर्चादौ अर्चयेत, अर्चा विग्रह आदि के रूप में मेरी आराधना करे, मेरी अर्चना करे। तो जब तक यह अनुभव न हो जाए तब तक अर्चा विग्रह की आराधना करना है, और अनुभव हो जाने के बाद छोड़ देना है। छोड़ने की बात नहीं कही गई है, इसका अर्थ यह है कि जब भगवान का परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में है और अपने हृदय में है, जब ऐसा अनुभूति होने लगे तो वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर केवल अर्चा आदि में ही लग जाए, अब कुछ दूसरा कर्म होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो भगवत अनुभूति होने पर केवल भगवत आराधना करे, ऐसा आदेश भी है, और व्यवहारिक रूप यह है कि होता ही नहीं है दूसरा काम, अब किसी कर्मानुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें भागवतम के, भगवत गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोकों को आप स्मरण कर सकते हैं, जैसे सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि, ये यथा तरोर मूल निषेच नैन तिप्यन्ति तत्स्कंध भुजो पशाखा प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रियाणां तथा सर्वार्हम अच्छते ज्या। जैसे पेड़ को सुखी रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए उसके टहनी पत्ते डाल पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट में भोजन डालना पड़ेगा। उसी प्रकार समस्त देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो इस कर्म को करने से, छोड़ने से, जो हमारा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है वर्ण आश्रम आदि, इसको छोड़ने से एक मन में शंका या प्रश्न होता है, जिज्ञासा, कि इन कर्मों के छोड़ने से हमको पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा अधूरा छोड़ देने पर। तो भगवान कहते हैं कि लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम टेंशन मत लो, अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षे इष्यामि मा शुच। और बृहद भागवतामृत में श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं कि भगवान का कहना है कि मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रिया लोपो भवेत यदि तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति त्रिशः कोट्यो महर्षय। अगर मेरे कर्म करने के लिए, मेरी भक्ति करने के कारण अगर नैमित्तिक कर्मों की क्रियाएं लोप होने लगी, छूटने लगी, छूट ही जाता है, अब कौन पितृ अर्चन करता है और क्या क्या सब छूट जाता है, देवी देवताओं की आराधना समय समय पर जो होता है वो सब छूटने लगता है। तो कहते हैं कि उन कर्मों को करने के लिए 3 करोड़ ऋषियों को नियुक्त किया गया है, जो मेरे लिए कर्म छोड़ देता है, तेसाम कर्माणि कुर्वन्ति, उनके कर्मों को करते हैं, त्रिशः कोट्यो महर्षय, 3 करोड़ महर्षि लोग, छोड़े हुए कर्म अधूरा नहीं रहता, उसको लोग पूरा कर देते हैं। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, यद्यपि भगवत आराधना के लिए यज्ञ कर रहे थे, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और सौवा अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था, श्री भगवान आ गए भिखारी के रूप में, तो उनको उनके मांगने पर 3 डेग पृथ्वी के बहाने संपूर्ण धन को दे दिए, संपूर्ण जगत को दे दिए, 2 डेग में ही भगवान सब कुछ ले लिए। और उल्टे बलि महाराज को बहुत डांटे फटकारे भी, तुम धूर्त हो, झूठे हो, मुझको धोखा दिया, और इसके साथ साथ कहे कि तुम अपने कर्मों के कारण नरक जाओगे। सब कुछ के बाद भी बलि महाराज बड़े धैर्य से भगवान का सामना किए, कहे प्रभु सब कुछ मेरा ले लिए, हमें मुझे भी ले लीजिए अपने चरणों में, अपना 3रा डेग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान उनके व्यवहार से संतुष्ट हो गए और उनको सूतल लोक में भेज दिए। इसके बाद शुक्राचार्य जी से कहते हैं, कि हे शुक्राचार्य जी, अपने शिष्य का जो अधूरा यज्ञ है उसको पूरा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, अभी हमारे शिष्य के यज्ञ में कमी रह गई है जिसको पूरा करना है। तो कहते क्यों, कमी तो रह गई, बीच में ही खड़मंजिल हो गया, मैं उपस्थित हो गया, अंतिम आहुति डाली ही नहीं गई, पूरा कीजिए। तो शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किसी भी यज्ञ में, किसी भी कर्म में, कोई तंत्र की, मंत्र की, यजमान की, पुरोहित की, या स्थान की, काल की, जो भी कमी रहता है उन सारे कमियों को पूरा कर देता है आपका नाम। आपके नाम उच्चारण करने से सारे कर्म पूरा हो जाते हैं। और इस यज्ञ में आप स्वयं उपस्थित होकर पूर्णतः संतुष्ट है, फिर भी कमी है, कोई कमी नहीं। मंत्रतः स्तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुन सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। आपके नाम उच्चारण करने से सारे कमियों की पूर्ति हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात है कि यजमान भी नहीं है, वो तो सूतन लोक चला गया, तो फिर कैसे कर्म पूरी की जा सकती है। तो भगवान कहते हैं कि आप जैसे ब्राह्मण की दृष्टि से ही सारा कर्म ठीक हो जाता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं प्रभु ये सब बात नहीं है, कर्म कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है आपकी आज्ञा का पालन करना। जब आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं इसको पूरा करूंगा, ऐसे कोई कमी नहीं है। तो शुक्राचार्य जी इस रूप में उसको पूरा किए। बलि महाराज छोड़कर चले गए थे, फिर भी पूरा कर दिया गया। तो इस तरह से सब कुछ पूरा हो जाता है। एकादश स्कंद में तो नवजुगेंद्र संवाद में कहा गया है, करभाजन जी कहते हैं युगधर्म का वर्णन करने के बाद कि एक व्यक्ति के जी में बहुत से कर्तव्य है और बहुत से ऋण है। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमिणी च राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहित करतम। कहें कि हे राजन, व्यक्ति पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कई ऋणों से युक्त है, देवताओं का ऋण है, और एकदम सबके नाकों तक जीने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, सूर्य के रूप में वर्षा करते हैं, पृथ्वी में अन्न उत्पन्न होता है उसमें शक्ति देते हैं, पौष्टिक तत्व चंद्रमा आदि सूर्य का सबका ऋण है। तो ये देव ऋण से और पितृ ऋण जो पितामह का ऋण है, जिनकी कमाई हम खा रहे हैं, उनका धन घर प्राप्त है हमको, उनका ऋण है। फिर ऋषियों का ऋण है, जो शास्त्रों में ऋषियों का ज्ञान है, ये जो हम गीता भागवत का मूल्य देकर खरीदते हैं ये तो प्रेस वालों का मूल है, कागज और प्रिंटिंग का, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान है उसका हम ऋण नहीं चुकाते। तो इस तरह से ये ऋषि ऋण है, और भूत ऋण भी है, जीवों का भी परस्पर ऋण है, एक दूसरा सहायता करता है, अपने समाज में भी प्लस कीट पतंग आदि भी हमारी सहायता करते हैं किसी न रूप में। पानी के अंदर रहने वाले जलचर जीव उसके गंदगियों को खा करके पानी स्वच्छ पीने लायक नदी में या कुएं में रखते हैं, उनका ऋण है। बहुत सारे ऋण है, लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान का शरण ले लेता है, भगवान मुकुंद का, वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। महाप्रभु इसका रेफरेंस देते हुए कहते हैं सनातन गोस्वामी से, काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी देव ऋषि पित्रादिक कभू नहीं ऋणी। जो शास्त्र की आज्ञा मानकर भगवान का भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है, वह कभी ऋणों से ग्रस्त नहीं होता, सबसे मुक्त हो जाता है। देव ऋषि पित्यादि कभी नहीं ऋणी। और ऐसे बारी बारी से अगर हम ऋण चुकाना भी चाहें तो असंभव है, नहीं चुका सकते। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि हम आलसी और दम्भी हो जाएं, अब बस भगवान की भक्ति करने लगे, कोई कर्म करना बाकी नहीं है। वैराग्य के नाम पर गंदा कपड़ा पहनना, गंदे निवास में रहना और एक समय का बना हुआ भोजन चार पांच समय तक खाना, ये सब आलस का पहचान है, ये सब वैराग्य और भक्ति नहीं है। ठाकुर जी की सेवा न करना, बस हमारे मन में केवल भगवान की भावना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी जीवों के हृदय में भगवान है। इस बात को समझने का अर्थ आलस नहीं है, दंभ नहीं है। अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो दिखाने के लिए दंभ करें कि हम बड़े उन्नत भक्त हैं, ये तो घोर अपराध है, उचित नहीं है। वो करता ही रहे, जो भगवान की आराधना है, ठाकुर जी की सेवा है, मंगला आरती, जप, जो सब क्रिया है उसको करे। अर्चन करने की बात मुख्य रूप से कही गई है इसमें, भगवान की आराधना करें। भगवान की आराधना करने का मतलब यह है कि श्री भगवान संपूर्ण जगत में कण कण में व्याप्त हैं और उनके अनुपस्थिति से कुछ भी नहीं हो सकता। इस ज्ञान को विकसित करने के लिए हमें अर्चन अवश्य करना चाहिए, ये श्रेष्ठ साधन है। भगवान का जो शास्त्र निर्दिष्ट रूप है, श्री विग्रह के रूप में उनकी स्थापना किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा द्वारा भगवान को उसमें आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है और वास्तव में भगवान उसमें होते हैं, अर्चा विग्रह के अंदर हैं, कण कण में भगवान हैं तो उसमें भी हैं और साथ ही सभी जीवों के हृदय में है, इसकी अनुभूति करना। बड़े उन्नत भक्त लोग इसका अनुभव करते हैं और सबके हृदय में जीवात्मा है और उससे अच्छा बुरा कर्म होते रहते हैं, तो उनके क्रियाओं को देखकर हमको लगता है तो थर्ड क्लास का व्यक्ति है, इसमें कैसे भगवत बुद्धि किया जा सकता है, कैसे इसको कहें इसका आचरण ठीक नहीं है, शराब पीता है, जहां तहां रोडों पर गिरा है। सभी के हृदय में भगवान की अनुभूति करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो भी क्रिया जैसे भी कर रहा है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे भगवान का हाथ है, उन भगवान उपस्थित है। अब उसका मिस यूज करके चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान है। चलता फिरता जीवात्मा मोबाइल टेम्पो है, जैसे समझ में नहीं आता कि वास्तव में इसमें भगवान कैसे हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कहीं बहुत प्रतिष्ठित मंदिर किसी काल में था होगा, जहां बहुत भगवत आराधना की जाती थी, लेकिन वर्तमान में आज वह उस रूप में नहीं है, पुराना है, खंडहर है, टूटा फूटा है, अथवा उसमें से श्री विग्रह ही ट्रांसफर कर दिया गया है, दूसरे जगह चले गए। फिर भी उस स्थान को बड़े भाव से भक्त लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, यह सोच कर कि यहाँ भगवान रहते थे या है उसी रूप में, यह भगवान का स्थान रहा है। मुख्य रूप से हम ब्रज में लीला स्थलियों को देखते हैं तो इसी भाव में स्मरण करते हैं कि भगवान लीला करते हैं या किए थे, किसी भी रूप में वह स्थान परम पावन है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा के साथ भगवान निश्चित रूप से हैं, वह अपने स्वतंत्र इच्छा से कुछ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान भी उस शरीर में है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान इतना स्वतंत्र क्यों जीव को छोड़ दिया है, जब साथ साथ रहते हैं तो क्यों दुष्कर्म करता है, क्यों इस तरह फ्री छोड़ दिया है, उसको ठीक ढंग से गाइड करना चाहिए। भगवान गाइड करते हैं, भगवद गीता में कहते हैं कि ददामी बुद्धि जोगम तम, लेकिन जीवत्व तो नष्ट नहीं कर सकते। जीव का जीवत्व तो है उसकी स्वतंत्रता, जैसे भगवान परम स्वतंत्र है वैसे ही जीव भी अणु स्वतंत्र है। अगर उसके स्वतंत्रता को सीज कर दिया जाए, बंद कर दे भगवान, तो उसका जीवत्व तो नष्ट हो जाएगा, वह यंत्र हो जाएगा। जैसे यहां कोई रिकॉर्ड किया हुआ प्रवचन अगर इस माइक में लगा कर छोड़ दिया जाए और सभी लोग यहां से निकल कर चले जाए, हॉल में लॉक कर दिया, एक भी व्यक्ति न रहे, तब भी वो बोलता रहेगा। लेकिन अब सभी लोग चले जाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि सुनने वाला यहां कोई है, और जब चले जाएंगे तो जान जाऊंगे बोलना व्यर्थ है, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन वो यंत्र नहीं समझता है, जड़ है। उसी प्रकार जीव के अंदर जीवत्व है, उसका चेतन शक्ति, उसकी स्वतंत्र इच्छा, अब उसी का सदुपयोग और दुरुपयोग करके जीव सुख दुख भोगता है, जो भी कुछ भी करे। अगर भगवान पूरा पूरा उसके स्वतंत्रता को कंट्रोल कर ले तो यंत्र हो जाएगा, फिर उसके कर्म का कोई मतलब ही नहीं, फिर उसको न कर्म करने की कोई आज्ञा दी जा सकती है, न अपेक्षा की जा सकती है। शास्त्रों में इतनी अपेक्षाएं जीव से है, आज्ञा है, इसलिए कि जीव स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए किसी टोकरी में बहुत सारे पुष्प को, फूल को रख दिया जाए, लाल पीला हरा तरह तरह के फूल, और कह दिया जाए आप इस ठाकुर जी के लिए माला बनाइए, तो कौन फूल कहाँ लगाना है यह बनाने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से सुंदर माला तैयार करता है, वो माला भगवान के गले के पास कौन पुष्प अच्छा लगेगा, फिर वक्षस्थल के पास कौन, नाभि के पास कौन, कहाँ कौन ठीक लगेगा, उस भक्त के इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। बहुत से पुष्प माला ड्रेस सिंगार एक पुजारी को दे दिया जाता है, लेकिन अब हर चीज नहीं बताया जाता, कहाँ कौन लगाओगे, मुकुट पर कैसा पुष्प लगाओगे, कहाँ क्या लगाओगे, किस तरह श्रृंगार करोगे, उस स्वतंत्र इच्छा से करता है। और कभी कभी कोई टेंड अनुभवी पुजारी जब सजा देता है तो देखते ही रह जाते हैं लोग, कितना सुंदर श्रृंगार है, फर्स्ट क्लास। और कोई अनटेंड व्यक्ति अगर श्रृंगार कर दिया तो आज कौन श्रृंगार किया है, तो उत्पटांग लगने लगता है, तो उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता। वैसे ही भगवान की एक अपेक्षा है कि जीव अच्छा कर्म करे, हमारे आदेश के अनुसार चले, और अगर उसको अपने हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल कर ले तो ऐसी अपेक्षाएं भी भगवान नहीं रख सकते। इसलिए जीव स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्र जीवात्मा के साथ भी जो क्रिया करने की शक्ति प्राप्त हो रही है, उसी पावर हाउस परमात्मा से प्राप्त हो रही है, उसी से प्राप्त हो रही है। इसलिए भगवान उसके साथ हैं, बिना उनके उपस्थिति के कुछ भी संभव नहीं है। तो जो बहुत उन्नत कृष्ण भावना भावित कृष्ण रत चित है, वो सब जगह भगवान की अनुभूति करता है, भगवान की आराधना करते हुए उनके ऐश्वर्य का, उनके माधुर्य का अनुभव करता है, उनके रूप का अनुभव करता है, उनके विविध लीलाओं का, गुणों का स्मरण करता है। आप लोग सुने होंगे दक्षिण में महाराष्ट्र में एक नाथ जी नाम के एक भक्त थे, तो एक बार ठाकुर जी के लिए रोटी बना रहे थे, रखे थे तब तक दूसरे तरफ उनका ध्यान गया, एक कुत्ता आकर लेकर चल दिया उसी में से। अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा था तो देखे कि वो लेकर जा रहा है, तो एक रोटी में घी लगाकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि अरे घी लगा हुआ लेकर जाइए, खाली क्यों जा रहे हैं। खुश हो गए कि चलो एक विग्रह के रूप में ठाकुर जी हैं यहाँ, कुत्ते के हृदय में भी ठाकुर जी आकर रोटी लेना स्वीकार के बिना भोग लगाए स्वीकार कर लिए, बहुत अच्छा है। वहां जाना नहीं, लगाने की कोई अपेक्षा नहीं, यहाँ आ गए जहाँ रोटी बन रहा है किचन में, तो घी लगा कर रोटी को, घी लगा हुआ रोटी दौड़ कर देने के लिए जा रहे हैं, इसको ले लीजिए वो तो रूखा है सूखा है, इसको लीजिए इसको लीजिए। उनको कोई दिक्कत नहीं कि ले गए, कुत्ता ले गया तो अब उसको डंडा से मारे, वो जानते हैं कि इसके हृदय में भी भगवान है और भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके चेतनता प्राप्त करके वो यहां तक पहुंचा है। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो रोटी लेकर गए। अब जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम सुने होंगे, बड़े विरक्त संत हैं, नवद्वीप में जब वो रहते थे या ब्रज में भी रहे राधा कुंड आदि पर, इसके बाद नवद्वीप में रहते समय वो जब भोजन करते थे तो दो तीन कुत्ते आ जाते थे और उनको खिलाते, सब पास में बैठते थे और अपने थाली से उनको भी खिलाते खाते, कभी कभी थाली में भी वो मुंह लगाकर कुत्ते छोटे छोटे कुत्तों का बच्चे दो तीन चार आ जाते थे प्रतिदिन। जब वो भोजन करते तो कुत्ते इंतजार करते और जो बैठते वो आ जाते, बड़े प्रेम से खिलाते थे। लेकिन जो सेवा करने वाले भक्त थे, क्या नाम था उनका, गिरधर गोविंद क्या कुछ है बिहारी, तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्या हो रहा है इन कुत्तों को आने नहीं देना है, ये रोज आ जाते हैं। तो समझ रहे थे कि आ जाते हैं इसलिए बाबा जी इनको खिला देते हैं, अगर नहीं आते तो खिलाने का कोई सवाल नहीं है। चलो तो अब उन लोगों को कुछ डरवा कर मार कर भगा दिए थे और जब उनके भोजन के समय दिए रोटी खाने के लिए तो कहे कि अरे वो धामवासी लोग कहाँ है उनको बुलाओ, कौन जो मेरे साथ रोज खाते थे वो कहाँ है। तो कहे कि अरे वो तो आज नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तो कैसे खाएंगे, उनको बुलाओ, नहीं आएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। और उनको तो पता था कि यही भगाया है, तो बड़े सिद्ध संत थे, तो अब बहुत मेहनत पड़ा उस दिन उन लोगों को बुलाने में। उसके बुलाने से तो अब आने का सवाल ही नहीं, वो तो दंडम दिखाया था मारा था, तो दूसरों की सहायता से उन लोगों को बुला कर लाया गया। इसी तरह बहुत विलंब हुआ, जब आ गए तब खाए और उनको खिलाए। तो सब उनको उन कुत्तों में यह देखते थे कि धाम में नवदीप में निवास कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, धाम वासी हैं। धाम में रहने वाले कुत्ते सुअर गधे सभी प्रणाम में हैं, ये उन्नत भक्तों की स्थिति है, सब जगह भगवान को देखते हैं। एकादश स्कंद में नवजोगेश्वर संवाद में भक्तों के लक्षण बतलाया गया है, सब में भगवान को देखते हैं, एक क्षण भी अपना चित्त भगवान से अलग नहीं कर सकते। उसके बदले में यहां तक कहा गया है कि लव मात्र भगवान से चित्त हटाने के बदले में त्रिलोकी का सुख ऐश्वर्य संपत्ति उस भक्त को दिया जाए फिर भी लेना स्वीकार नहीं करता है, सर्वदा भगवान में उसका मन रहता है। तो ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त हो जाए उसको क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है अभी बताना नहीं पड़ेगा, वो उसी में रहेगा, लेकिन इसका दंभ नहीं किया जा सकता, ये उचित नहीं है, दिखावा नहीं, स्वाभाविक। तो यहां जो अर्चन की बातें कही गई कि अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करते हुए ईश्वर की प्रतिमा आदि की पूजा करें, जब तक वह अपने हृदय में और संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में भगवान का अनुभव न कर ले, परमात्मा का अनुभूति न कर ले, तब तक उसको अर्चन करना चाहिए। लेकिन इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जब समस्त जीवों के हृदय में भगवान सर्वनियंता के रूप में है ही, बिना उनके उपस्थिति के कोई कुछ कर नहीं सकता, निश्चित रूप से भगवान है। अगर एक चींटी धरती पर रेंगती हुई दिखाई दे तो समझना चाहिए इसके अंदर भगवान है। एक छोटा पावर का, बड़ा पावर का बल्ब, छोटे पावर का एकदम छोटा जीरो पावर का एक बल्ब भी जल रहा है तो इसका मतलब उसमें करंट है, पावर हाउस से उसका कनेक्शन है। और बहुत बड़ा पावर फोकस एक जलता है उसके अंदर भी है, वो अपने अपने क्षमता के अनुसार भले प्रकाश दे रहा है लेकिन प्रकाश करंट सब में है। ये रेंगते हुए चींटी, जीव जंतु सबके अंदर भगवान है, सर्वनियंता सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति से ही वो कर चल रहा है। इस रूप में अनुभव करे, धीरे धीरे अपने अनुभूति को बढ़ावे भगवान की आराधना कर कर। इसके साथ साथ केवल परमात्मा के रूप में ही भगवान नहीं है, भगवान के स्वरूप को तत्वविदों ने तीन रूपों में अध्ययन किया है, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, बदंती तत् तत्विदस्तत्वम यज्ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो इस तरह से वो जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, इसके साथ साथ भगवान का एक निजी स्वरूप है भगवान परमात्मा के साथ, जिनका स्वरूप है सुंदर, श्याम सुंदर श्री विग्रह है, जिनका रूप है, जिनकी मधुर लीलाएं हैं, जिनके बहुत सारे प्रेमी भक्त हैं, परिकर हैं। तो इस तरह से उनका अनुभूति किया जा सकता है। तो उनके स्वरूप की स्थापना श्री विग्रह के रूप में की जाती है, भगवान श्याम सुंदर मुरली धारण किए हुए, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में धनुष बाण धारण किए हुए, ऐसे प्रतिमा बना करके उनकी आराधना की जाती है। उसी परमात्मा का भगवत भगवान के रूप में आराधना की जाती है। तो विविध प्रकार के कर्म हैं, मैं पीछे से श्लोकों को चाहता था कहना लेकिन इसी में भूल गया। तो यहाँ जो शुरू में विश्वास श्लोक में कहा गया है, यथा बात रथो घ्राणम आवृंगते गंध आशयात एवं जोगरतम चेता आत्मानम अंबिकारी जत। जिस प्रकार हवा अपने साथ सुगंधित गंध को लेकर नाकों तक पहुंचा देती है, उसी प्रकार व्यक्ति जो उन्नत व्यक्ति है, इधर आगे भक्ति का वर्णन किए हैं उसी में कहते हैं कि वैसे उन्नत कृष्ण भक्त लोग सब जगह सर्वव्यापी परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वो नाक तक हवा लेकर गंध को पहुंचा देती है, उसी तरह उन्नत चित्त वाले व्यक्ति संपूर्ण विश्व में स्थित भगवान के स्वरूप को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और भगवान कहते हैं आगे, भगवान कपिल देव, अहम सर्वेश भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमोज्ञाय माम मर्त्य कुरते अर्चा विनम्बनम। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अहम सर्वेश भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से हूं। और यदि कोई सर्व जीव सर्व हृदय स्थित परमात्मा की उपेक्षा करके, अवमानना करके, तम अवज्ञाय अवज्ञा करके और मंदिर के अंदर स्थित श्री विग्रह की अर्चना करता है तो यह स्वांग है, दिखावा है। विडम्बनम, विडम्बनम का मतलब छिड़ाता है, बिराना भोजपुरी में कहते हैं। आरती दिखाता है तो भगवान समझ रहे हैं उंगली दिखा रहा है, ऐसे अंगूठा दिखा रहा है। जब सबके हृदय में हमको नहीं देखता और काष्ठ की पत्थर की मूर्ति में वो आरती करने चलता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। भगवान कहते हैं अच्छा नहीं लगता है। जीवों के अंदर स्थित परमात्मा की उपेक्षा कर देता है, अवमानना कर देता है, और फिर वह मंदिर में पूजा करता है। तो ये श्लोक कृष्ण उन्नत कृष्ण भावना भावित भक्तों के स्थिति का नहीं है, नव सुखवा नए भक्त के, नए स्तर के भक्तों का है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी अर्चा में विश्वास करता है, भगवान मानता है, आकर मंदिर में प्रणाम भी कर लेता है, माला फूल खरीद कर ला कर दे देता है सब, लेकिन वह भगवान के भक्तों पर विश्वास नहीं करता, उनमें उनका महत्व बुद्धि नहीं होता है। भगवान की लीला कथा या भगवान की माधुर्य आदि में उसको कोई अनुभव नहीं है, कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं है। आकर मंदिर में प्रणाम कर लेगा, कुछ पैसा भी चढ़ा सकता है, कुछ फल लाकर दे सकता है, माला भी दे सकता है। प्रायः देखते हैं लोग आने वाले इसी स्तर के ज्यादा होते हैं मंदिर में, लेकिन उनको भक्तों में भगवान को नहीं देखते, भगवान भक्तों के साथ हैं ऐसा नहीं देखते। जैसे कल वैष्णव दास जी एक उदाहरण दिए थे कि एक छोटा सा गाय का, तुरंत की ब्याई हुई गाय के बच्चा को लेकर अगर कोई चल दे तो गाय पीछे पीछे दौड़ती आती है, और उस बच्चे के अलावा गाय को अगर हटाना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं हट पाती है, क्योंकि उसका प्रेम बच्चे से है। तो भगवान को जो हृदय में धारण किया है, उस भक्त के साथ होने पर भगवान ज्यादा जल्दी स्वीकार करते हैं उसको। इस बात को कनिष्ठ अधिकारी नहीं समझता। तो ऐसे कनिष्ठ भक्तों के लिए भगवान कपिल देव कहते हैं कि ऐसा स्वांग हो जाता है, दिखावा अर्चन। इसलिए भक्तों के हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में, इस बात को जानना चाहिए। तो भगवान की सेवा हर वस्तु से, हर व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, उन्नत भक्त लोग जानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर में आने वाले ऐसे नए भक्तों को विग्रह सेवा में लगाया जाता है, और विग्रह की क्या परिपाटी है, क्या नियम है, उसको सिखाया जाता है, और प्रत्येक भक्तों का कर्तव्य है कि उसे सिखाए, कृष्ण कथा आदि की माधुरी बतावे। फिर जो माम सर्वेशु भूतेषु संतम आत्मानमीश्वरम हितवार्चम भजते मोढ्यम भस्मन्ययो ज्योति स। जो मंदिर में श्री विग्रह आदि की आराधना करता है किंतु सबके हृदय में आसीन भगवान है, उसको नहीं जानता, और ऐसा न जानकर इस भावना को बिना बढ़ाए वो केवल अर्चन करते जाता है, तो उसका सारा अर्चन व्यर्थ है। जैसे राख में डाले गए घी की तरह व्यर्थ है, और अग्नि में घी डालने से हवन होगा, लेकिन वह ज्ञान बस भस्मनी एवं जी होती, भस्म में ही घी डालता है, व्यर्थ घी चला गया, उसका परिश्रम व्यर्थ चला गया। इसी को, एक ही बात को कई श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। दिशतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य न मना शांति मिक्षति। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु दूसरों से ईर्ष्या करता है, और इस कारण उसमें जो भेद दृष्टि है कि अरे ये भगवान, भगवान होना तो बहुत बड़ी बात है, साधारण ढंग से जीव से भी ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना चाहिए, अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रायः हो जाता है, या तो होता ही रहता है, छोटे छोटे चींटी तो मरते रहते हैं कहीं भी, तो जान बुझ कर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उसे शांति प्राप्त नहीं होती है, हिंसा करने के कारण वह अशांत रहता है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। चलो अपना काम बनाने के लिए किसी जीव की हत्या कर दें, ऐसा ठीक नहीं है। और कल आप सुने कि चाहे उत्तम या और छोटा बड़ा किसी भी साधनों से, बहुत बड़ी सामग्रियों से भगवान की आराधना किया जाए, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। कहते हैं कि मेरी संतुष्टि तो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से भगवान है, इसका अनुभव करने में और उस अनुभव के अनुरूप व्यवहार करने में मैं संतुष्ट होता हूँ। किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, सब जगह भगवान है इसकी अनुभूति करना चाहिए। तो इस प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत फिर आज का श्लोक आ गया कि व्यक्ति भगवान की आराधना करे तब तक करे, तब तक कर्म करते रहे, कर्म को छोड़े ना जब तक सब जगह भगवान की अनुभूति ना हो जाए। भगवान की अनुभूति परमात्मा रूप से अनुभव करने के लिए अर्चन बहुत आवश्यक है, और अर्चन उन कर्मों के साथ करना चाहिए। कर्म छोड़कर प्रारंभ में करने पर वो बड़ा उत्पात करता है, पाखंड का रूप ले लेता है, इसलिए उन कर्मों को करना चाहिए। स्वाभाविक जब छूट जाए तब छूट ही जाएगा, वो तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए भगवत श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, निर्वीणा नाम ज्ञान जोगो न्यासिना मिह कर्मसु तेसु निर्वीण चेता नाम कर्म जोगस्तु कामिनाम। जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं, कर्म भी नहीं करना चाहते, उसके फल से भी उनकी मतलब नहीं, और उसका त्याग कर चुके हैं दूर से, उनको ज्ञान योग का अधिकारी कहा गया है। और ठीक इसके विपरीत जो कर्म करने में आसक्त है, इंटरेस्टेड है और कर्म फल में भी आसक्त है, उनको कर्म योगी कहा जाता है। और इससे थोड़ा सा भिन्न यदीक्षया मत कथा दऊ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्वीणो नाति सक्तो भक्ति जोगो जस सिद्धिदा। कहते हैं जो व्यक्ति न अत्यंत विरक्त है, न अत्यंत आसक्त है संसार के भोगों में, और उसकी सबसे मुख्य कार्य है मेरी लीला कथा में विश्वास है, उसकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति जोग का अधिकारी है। संसार ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतना कभी कभी लोग वैराग्य दिखाने लगते हैं, भक्त लोग भी, कि अब कुछ उत्तर नहीं होता, बस ठीक है आपको जो करना है कीजिए। अच्छा पुरुषोत्तम मास आ गया है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, इसका उत्तर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं केवल यही उत्तर देता हूं कि जो रोज रोज कर रहे हैं उसको थोड़ा गंभीरता से करना चाहिए, जो लापरवाही से कर रहे हैं उसको थोड़ा गंभीर होकर करना चाहिए, ज्यादा पाखंड के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा तुलसी को जो भोग लगता है उसको कैसे खाना चाहिए, दांत से नहीं चबाना चाहिए, निगल जाना चाहिए, पता नहीं आपको पता होगा, हमको नहीं पता है, बहुत ज्यादा पाखंड इधर से उधर पता नहीं कहां से सीख गए हैं, कुछ इधर उधर की बातें बहुत बढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम मास आ गया तो 16 माला से 64 माला जप कीजिए, और सब बोल बोल कर सुन सुन कर बढ़िया से, और विदाउट फेल मंगला आरती कीजिए। तो खाना चाहिए कि उपवास करना चाहिए, मुझको पता नहीं है, अगर उपवास करके कमजोर हो जाए यह भी ठीक नहीं है, और खाकर सो जाए यह भी ठीक नहीं है, भजन करना उद्देश्य है। भजन जैसे अच्छा हो सके, खाकर बिना खाए जैसे भी वो करना चाहिए। तो जैसे भी लीला कथा में श्रद्धा हो जाए, ना अधिक आसक्ति हो ना विरक्ति हो, तो उसको यहां तक भगवान कह दिए कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेदेत जावता मत कथा श्रवणादौ श्रद्धा जावन न जायते। कर्म संबंध के जितने विधि निषेध हैं उनके अनुसार कर्म तब तक करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत एवं स्वर्गादिक सुखों से वैराग्य न हो जाए, जावन निर्वेद न जावता। और निर्वेद वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि यहां से छोड़कर हरिद्वार चले गए, हिमालय के गुफाओं में चले गए, ये सब नहीं। अथवा अर्थात आगे कहते हैं कि जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन न जायते। कर्म करने का विधान है भक्ति को बढ़ाने के लिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे सुनने का इंटरेस्ट बढ़ जाए, भगवान के रूप में लीला में आसक्ति हो जाए, भगवान के गुणों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाए, इसको बढ़ाना है सब मिलाकर। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको करने के लिए हमको अर्चन का अभ्यास करना चाहिए। अब भागवत के प्रारंभ में ही एक प्रसिद्ध श्लोक सुने हैं, धर्मस्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजत नोत्पादये यदि रतिम श्रमे वही केवलम। जितने धर्म कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, अगर खूब बढ़िया से अनुष्ठान किया जाए और उन अनुष्ठानों के द्वारा भगवान के लीला कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई तो लाखों करोड़ों रुपया का घी जला देने से कोई फायदा नहीं, बहुत भारी आडंबर भोज भंडारा करने से कोई फायदा नहीं। आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि कृष्ण कथा की ओर कितनी बढ़ रही है, यह महत्व की बात है, नहीं तो श्रम में वही केवलम। तो उसी प्रकार अर्चन आदि और भी अन्य कर्मों का महत्व है, इसलिए है कि वो कर्म हमारे भक्ति के विकास में सहायक है, उन कर्मों को अवश्य करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जब वास्तव में इसमें मन लग गया, रुचि हो गई, तब कर्म सफल हो गया। जिस कर्म को हम किए वो सब भगवत भक्ति हो गई, जितने सहायक है। तो सब कुछ मंगल आरती में 4:30 बजे उपस्थित हो जाना ही मंगल आरती नहीं है, 3:30 बजे जगना, ब्रश करना, स्नान करना, कपड़ा पहनना, तिलक करना, सब मंगल आरती है। वो मंगल आरती में उपस्थिति के सब साधन है, इसलिए सब मंगल आरती है। उसी प्रकार जितने भी कर्म है अपने भक्ति में सहायक, वो सब भक्ति के अंतर्गत है और उसको करना ही चाहिए। डायरेक्ट 4:30 बजे उपस्थित हो जाना मंगल आरती है और उन कर्मों को छोड़ दें तो ये संभव नहीं है, वो करके ही आना पड़ेगा, स्नान करके, कपड़ा पहनकर, तिलक करके सब। इसलिए उन कर्मों का भी महत्व है, उन कर्मों का महत्व है और उसको छोड़ना उचित नहीं है। जब स्वाभाविक मन लग गया तो छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है अपने आप। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राम।